نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک موقع دیا کہ ہم اس کے کلام مجید میں سے کسی بات کو سن کے سنا کے اس میں سے اپنے لیے عمل کی باتیں منتخب کر سکیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 108 کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، کیا ہاذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں اور میرے فالورز یعنی میری اتباع کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں. ایک آیت ہے لیکن انبیاء کرام کے منہج کو واضح کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے. ہم میں سے کوئی بھی اتنا نہیں آزمایا گیا جتنے وہ آزمائے گئے، کیونکہ عموماً لوگوں کی آزمائش شروع ہوتی ہے جب وہ اپنی انفرادی زندگی میں ذمہ داریوں کو نبھانے کے قابل ہوتے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کی آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب بچوں کے گود میں کھیلنے اور کھانے کے دن ہوتے ہیں، اور پہلی آزمائش جو پڑی تھی وہ گھر والوں سے پڑی، کیونکہ اللہ والوں کے راستے میں سب سے پہلی رکاوٹ گھر سے شروع ہوتی ہے. ان کے 10 اور بھائی تھے، یعنی ان کے علاوہ 11 بھائی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اور بنجامین دو ایک ماں میں سے تھے، اور ان کے علاوہ 10 بھائی دوسری ماں میں سے تھے. ان کے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، نبی تھے، اپنے وقت کے چنے ہوئے انسان تھے. حضرت یوسف نے بچپن میں خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. معصوم بچے نے یہ خواب دیکھا، صبح اٹھ کے باپ کو سنا دیا کہ ابا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. باپ جو نبی تھے اور اللہ کے نیک بندے، اشارے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس خواب کے پیچھے کوئی بہت بڑی کہانی ہے، اور اس بات سے بھی کو بھی جانتے تھے کہ جب کسی کو نعمت ملتی ہے تو ساتھ ہی اس سے حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، تو نے مجھے سنا دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی اور کو نہ سنانا، خاص طور پہ گھر والوں کو، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ کل ذی نعمت مخصوص، ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے، یعنی اس سے لوگ حسد کرتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس کو جو ملا ہے وہ رب کا فیصلہ ہے، اور اگر کسی نے کوشش کی ہے تو کوشش کا میدان تو ہر ایک کے لیے کھلا. خیر، پھر کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، نبی کی اولاد ہونے کے باوجود اور ایک آنے والے نبی کے بھائی ہونے کے باوجود، شیطان کے وار سے نہ بچ سکے. جیسے شیطان دوسروں کو بہکاتا ہے، ان کو بھی بہکایا کہ دیکھو یہ جو باپ ہے نا، یہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، تم سے نہیں کرتا یا کم کرتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ خیال ہر پیدا ہونے والے بچے کو آتا ہے، लेकिन कुछ लोग फिर शैतान के इस वसवसे पे चल पड़ते हैं और कुछ उसको दबा देते हैं। इन्होंने कहा कैसा करते हैं कि यूसुफ को रास्ते से हटा देते हैं। देखिए कितना भोंडा प्रोग्राम बना, बाप की मोहब्बत लेके खुद मुझसे मोहब्बत लेना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो अमली ज़िंदगी में बहुत सारे लोग यही बेकार का काम करते हैं, और वो क्या कि नफ़रतें दे के मोहब्बत लेना चाहते हैं, या किसी की मोहब्बत को छीन के उसकी मोहब्बत लेना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे शादी के बाद घर में जाने वाली नई लड़की जो ये सोच लेती है कि अगर मुझे, आप लोग बैठ जाए बाद में कीजिएगा, अगर मुझे अपने शौहर की नज़रों में प्यारा बनना है ना, तो मुझे इसकी माँ, इसको इसकी माँ के खिलाफ करना चाहिए। इसकी बहनों का तो कोई दखल ही ना रहे घर में, क्योंकि मुझे तो शौहर की मोहब्बत चाहिए। और इस तरह वो सोचती है कि मैं इसकी चहेती बन जाऊंगी, लेकिन वो ये नहीं समझती कि नफ़रतें देके कभी मोहब्बत नहीं ली जाती। खैर, कत्ल तक की बात हो गई, लेकिन सब प्लानिंग करने वालों में जो सबसे अच्छा था उसने मशवरा दिया कि देखो मारो नहीं, आखिर तो भाई है ना, तुम ऐसा करो कि इसको दूर दराज कहीं छोड़ो, किसी कुएं में डाल दो, कोई भी ले जाएगा हमारी बला से, लेकिन हमारी आंखों के आगे से हट जाए। यहाँ से देखिए हसद की बुराई, दुनिया में आने के बाद सबसे पहला गुनाह जो इंसानों में या दुनिया में आने के बाद किसी से हुआ था वो हसद ही था, और वो इब्लीस से हुआ। आदम अलैहिस्सलाम से उसने हसद किया और तकाबुल कर दिया कि खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन, कि इसको तूने मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया, ये कैसे मेरे से बेहतर हो सकता है, अगर अना का शिकार हो गया। भाइयों ने भी कुछ ऐसे ही काम किया। खैर, बाप से बहाना करके सैर की इजाज़त ली, और इरादा पहले से ही था, वही हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंका है। भाइयों ने क्या चाहा कि यूसुफ गहराइयों में गिर जाए, लेकिन अल्लाह का इरादा कुछ और था। वो तो रो धो के झूठे खून लगा के बाप की निगाहों में अपने ख्याल के मुताबिक सच्चे हो गए। ये अलग बात है कि बाप को समझ आ गई थी, क्योंकि वो खुद ही बता रहा था कि कुर्ते पे खून लगा है और कुर्ता फटा नहीं। कौन सा ऐसा भेड़िया होगा कि जो पहले उसका कुर्ता उतारेगा फिर उसको मारेगा, छूट के पाँव नहीं होते ना। कुर्ता फाड़ना भूल गए, और आके का देखें ये यूसुफ को भेड़िया खा गया। चलो खैर, बाप सब्र करके बैठ गए। यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होता है, और वो दौर क्या था जिसने उनकी ज़िंदगी में एक इनकलाब लाना था। बज़ाहर इस वक्त देखा जाए, आज के दौर में ऐसी कोई खबर छपे, क्या कमेंट्स होंगे, हाय बेचारा यूसुफ, बच्चा मासूम, माँ तो पहले ही ना थी, बाप की मोहब्बत से भी अलग हो गया, देखो खून सफ़ेद हो गया भाइयों का, और देखो कहाँ अंधे कुएं में डाल के आ गए। इंसान अपना सर फोड़ते ही रहते हैं अल्लाह के फ़ैसलों के आगे, लेकिन अल्लाह के हर फैसले में कोई खैर होती है। उस तरफ से एक काफ़िला गुज़र रहा था, मिस्र जो करीब का एक बहुत आला दौलतमंद तालीम याफ्ता मुल्क था, आज के दौर में आप कह लें कि वेस्टर्न कंट्री, और जहाँ ये सारा हादसा हुआ ये किनान था, मुल्क शाम का एक छोटा सा गांव, यानी अभी तक यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गांव में रहते थे। अब वहाँ से कुएं में से निकाले गए और मिस्र पहुँच गए। लोगों ने जब देखा बच्चा है, खूबसूरत है, उस दौर में लोग बेचते थे, इंसान बिकते थे, खैर चंद टकों के इवज़ यूसुफ बिक गए। वो यूसुफ जितने इतना इतना प्यारा ख्वाब देखा हुआ था, वो यूसुफ जो कल नबी बनने वाला था, वक्त ने उसकी क्या कीमत लगाई, दिराहिम मादूदा या बख्सिन कम, बिल्कुल टकों के मोल बिक गया। और रास्तों में पड़ी हुई चीज़ें ऐसी बेकदर हो जाती हैं, जो चीज़ें घर से बाहर जाती हैं फिर उनकी कदर नहीं रहती। वही लड़की जो माँ बाप के घर में एक प्रोटेक्टेड, एक ऐसे माहौल में होती है क्योंकि उसकी तरफ निगाह ना उठा सके, वही बच्ची जब अपनी मर्जी से घर छोड़ के भाग जाती है तो वो चंद टकों की रह जाती है, चाहे जिसके लिए भी गई हो, कल वही उसको ताना देगा कि तुम क्या हो, वही हो ना जो अपने एहसान करने वाले माँ बाप को भूल के आ गई थी। खैर, उनको नहीं पता था कि हम क्या खरीद रहे हैं। और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँच गए, आज की ज़ुबान में तरक्की याफ्ता जगह, तरक्की याफ्ता मुल्क में पहुँच गए। अजीज़ मिस्र था, घर में ले गया, बीवी से कहा कि देखो अच्छा प्यारा बच्चा, इसकी अच्छी केयर करना, हम इसको हो सकता है बेटा बना ले, हमारे काम आएगा। अब यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबियत शुरू हुई। फितरत तो थी ही तौहीद पे, कुछ बच बाप की चंद सालों की तरबियत का असर भी था, लेकिन अब वो एक ऐसे माहौल में थे जो खुदा फरामोश माहौल था, कुफर और शिर्क का माहौल था। और उस दौर में बेहयाई और बुराई कितनी आम थी, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि वो औरत जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी, ज़ाहिर है कि उम्र में यूसुफ से बहुत बड़ी होगी, एक मौका पाके उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दे दी कि चलो आओ मेरी ख्वाहिश पूरी करो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बुरे माहौल में अपनी फितरत मसख नहीं होने दी थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे इसके फंदे से हटा दे। किस्सा मुख्तसर, शौहर ऐन वक्त पे आ गया और यूसुफ की जान बच गई। उस शख्स को पता चल गया कि कसूर मेरी बीवी का था। बीवी बड़ी होशियार थी, बाप बेशौहर को देखते ही लफ्ज़ बदल लिए कि देखो ये तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा कर रहा था। रिवायात में आता है कि ऐसे वक्त में यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही की गवाही एक बच्चे ने दी, शाहिदा शाहिदु मिन अहलिहा, उसी औरत के घर वालों में से किसी ने गवाही दी। यूसुफ ने अपनी सफाई में बात करना चाही, लेकिन अजीज़ मिस्र ने मामला रफा दफा करा दिया, छोड़ो बस छोड़ो, जैसा अमूमन ऐसे वक्तों पे होता है, गुलामों को मुलाजमों को चुप करा दिया जाता है, और औरत को थोड़ा डांट दिया कि तेरी गलती है लेकिन अब इसको रहने दो। अब वो औरत थी, इसी से आप देखिए कि उसके दिल की आग नहीं बुझी होगी, शहर में बात फिर भी निकल गई, और ऐसी बातें कभी इतनी छुपती नहीं है। हर बंदा दूसरे को बात बता के ये कह भी देना कि देखो तुम किसी को न बताना, फिर भी बात निकल जाती है। इसी तरह वो बड़े घर की औरत थी, फर्स्ट वुमेन के करीब की कोई औरत थी, फर्स्ट लेडी थी, बात फैल गई कि देखो देखो यूसुफ की ये अजीज़ मिस्र की बीवी, इसको और कोई नहीं मिला, अपने गुलाम और अपने मुलाजम के साथ बुरा फेल करने लगी। खैर जितने मुँह उतनी बातें, औरत तक भी बात पहुँच गई, और बात पहुँचती है। अब एक दफ़ा मुँह से निकालें फिर आप भूल जाएं, वो बात खुद ही आपको याद दिलाएगी कि तुमने कभी मुझे मुँह से निकाला था। खैर फिर क्या हुआ, होशियारी की, सारे शहर की बड़ी बड़ी बेगमात को अपने घर दावत पे बुलाया। क्या अब इसको बताती हैं इनको कि ये जो सब्र मैंने इतने साल यूसुफ के साथ एक घर में रह के किया है, इनको भी बताती हूँ इनका क्या हाल होगा। यूसुफ को कहा कि खूब अच्छे पहन ड्रेस ओढ़ के आना, और सबके आगे उस दौर के रिवाज के मुताबिक फल और छुरियाँ रख दी, खाइए। और जब वो इसी कैफियत में थी तो यूसुफ से कहा कि बाहर आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुसन इतना ज़्यादा था कि बाज़ रिवायतों में आता है कि दुनिया का आधा हुसन यूसुफ को दिया गया था अलैहिस्सलाम। खैर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए तो वो औरतें आपको देखती की देखती रह गई, आप ये कह लें, और उनको होश ना आई कि उन्होंने अपनी उंगलियों की पोरियां तक काट ली। कट लगे या क्या हुआ ये तो बात इतनी अहम नहीं, लेकिन बेहुद हो गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के कहने लगी ये तो कोई फरिश्ता लगता है। खैर अब मौका मिला था अजीज़ मिस्र की बीवी को बात करने का, कहा देखा ये है वो शख्स जिसके बारे में तुम मुझे ताना देती थी, तुमने एक छलक देखी, तुमने उंगलियां काट ली, तो फिर अगर मेरे भी दिल में, मेरे तो दिल में छेद हो गया तो क्या बड़ी बात है। और रिवायत में आता है कि उन औरतों ने भी फिर यूसुफ के साथ इसी किस्म की कोशिश की। यानी इससे आप देख सकते हैं कि उस दौर में बुराई कितनी थी आम, कि औरत दावत गुना देती फिरे, ये तो आज के दौर के तोहफे लगते हैं ना, लेकिन उस दौर में भी थे। खैर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कितने मौके थे उस वक्त गुनाह को कबूल करने के, सिर्फ एक चीज़ गौर से देखने की है। पहले मौके पे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र की बीवी के साथ तन्हा थे, कितने मौके थे कि वो उस दावत को कबूल करते। मसलन पहली बात, मजबूर थे। उस औरत ने पहले घर के सब दरवाजे बंद कराए, दूसरी बात तनहा थे, अगली बात दावते गुना औरत की तरफ से थी, पहल उसने की, फिर उससे अगली बात गुलाम थे, ना मानते तो कहाँ जाते। अगली बात परदेस था, अपने मुल्क से बाहर है, जो मर्जी करें कौन देखेगा हमें। बाप भाई माँ बाप कोई भी नहीं थे पास, और जवान भी थे और खूबसूरत भी थे। कौन सी चीज़ थी जिसने यूसुफ अलैहि सलाम को इस बुराई से रोका? सोचिए, बाप का डर था, माँ का डर था, भाई को बता दूंगी ये डर था, कुछ भी नहीं था। एक ही खौफ था कि मेरा रब मुझे देख रहा है, और इसी कैफियत को तकवा कहते हैं। ये कान्ना कतराहू, गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, नहीं फाइन्नहू यराक, फिर वो तो तुम्हें देखता है। ये है वो बड़ी दीवार जो इंसान को ऐसे बुरे मुआशरे में गुनाहों से बचा सकती है। जब आप इसको तफसीर के नाते से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में अल्लाह करे आपके वो मौका आए, तो एक एक लफ्ज़ पे 10 से ज़्यादा ज़्यादा नुक्ते निकलते हैं इस तफसीर में, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कितने उज़र थे, और उन औरतों ने जो अज़ीज़े मिस्र की बीवी को लानत मलामत की, उसकी क्या शिद्दत थी। लेकिन बात का खुलासा क्या है, किस चीज़ ने यूसुफ़ को बचाया? अंदर के ईमान और तकवे ने। आज हम ये इतराज़ करते हैं और ये गिला करते हैं कि औलादें बिगड़ गई, औलादें हाथ से निकल गई, बात नहीं सुनते, हमारी मानते नहीं, डांटो तो पुलिस को बुला लेते हैं, मारने की तो नौबत ही नहीं आएगी, इनको पकड़ो, इनको बुरा को, इनको अच्छा को। कभी सोचिए, आखिर हमारा भी तो कोई कसूर होगा, आखिर हमारा कसूर क्या है? आज जो हालात दुनिया में हमें नक्शे पे दिखते हैं, ये वो हालात हैं कि जो आज पहली दफ़ा नहीं आए, लेकिन ये अलग बात है कि इसकी शिद्दत जो है ना, वो पहले से ज़्यादा होती जा रही है दिन ब दिन। इस वक्त ऐसे लगता है कि मुसलमान की ज़िंदगी एक लट्टू की तरह घुमाई जा रही है, जिधर कोई जाता है उस तरफ लुढ़क के उस तरफ हो जाता है, दूसरी तरफ जाता है तो दूसरी तरफ हो जाता है। वजह क्या है कि वो मकसद नहीं सामने जिसके तहत दुनिया में भेजे गए थे। अगर कहानी पूरी करके आपको शायद तक लाना चाहूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम इन सारे मरहलों से गुजरते हुए उस वक़्त बड़े शौक से उस दावत को कबूल करते, लेकिन कहा नहीं, ए अल्लाह मुझे कैद पसंद है, मैं ये गंदगी की दुनिया में नहीं आ सकता, मुझे तो कैद खाने में डाल दे, मुझे ये क्लब का माहौल नहीं चाहिए। क्योंकि बंदा मोमिन इसी तरह खुद को कैद करता है, कल जहन्नम की कैद से वही बचेगा जो आज अपने नफ्स को कैद करेगा। जेल में चले गए, औरतों ने ना सिर्फ ये कि गलत काम किया, बल्कि झूठ सच बोल के मुकदमा चला, यूसुफ जेल में चले गए। तकरीबन 7 साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे, बेगुनाह, बेइल्ज़ाम, बस एक खुद से मांगी हुई कैद थी। उस वक्त भी मौके थे कि वो आते अपनी सफाई पेश करते, लेकिन नहीं मांगा, वो मुतमईन थे, वो कहते थे ये वो माहौल, ये दौर है कि जिस दौर में मैं अपने आप को छुपा के बैठ जाऊंगा ना, तो मेरी इज्जत महफूज है। जेल में उनकी मुलाकात हो गई दो कैदियों से, दोनों पर इल्ज़ाम था कि बादशाह के खाने में जहर मिलाया। एक बादशाह का बावर्ची था, नान भाई कहते हैं जिसको, रोटी पकाने वाला, और दूसरा शराब पिलाने वाला था। अब दोनों में से किसी एक ने ही पिलाया होगा ना, या खिलाया होगा, इस इल्ज़ाम में थे दोनों। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो कैद दी ना 7 साल की, अपने लफ्ज़ों में उसको कह लें कि यूसुफ की ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे। क्यों? क्योंकि वो कैद जो अल्लाह के रास्ते में मिलती है ना, वो बंदे को रब से मिला देती है। तन्हाई का मौका, मारफत का मौका, अल्लाह ताला ने इसी दौरान उनको नबूवत भी दी। अब जब ये सारे मामलात हुए, तो अपने अच्छे रवैये की वजह से कैदियों में मशहूर हो गए। हर एक यूसुफ अलैहिस्सलाम को यही कहता है कि इन्नक मिनल मुहसिनीन, तू मुहसिन है, तू बड़े एहसान करने वाला है। अल्लाह ताला ने इनको ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी दे दिया। और जो बंदा जितना तदब्बुर करता है ना, दुनिया के हंगामों से कट के एक रब की तरफ जाता है ना, उतना ही अल्लाह ताला फिर उसके अंदर फहम और फरासत भर देता है। ये कोई खरीद के लाने वाली चीज़ नहीं होती, या किसी से छीनने वाली चीज़ नहीं होती। अर्रसुल हिकमती मखाफतुल्ला, हिकमत का सर अल्लाह का खौफ है। जितना अल्लाह का खौफ होगा उतनी हिकमत आएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने दीनी सफ़र की मंजिलों में थे और जेल में साथ साथ तबलीग भी करते दिखते हैं। उन कैदियों ने दो ख्वाब देखे और यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी। एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बादशाह को शराब पिला रहा हूँ, और दूसरे ने ख्वाब देखा कि मैं मेरे सर के ऊपर कुछ रोटियाँ रखी हुई हैं और परिंदे आके उनको खा रहे हैं। इसकी ताबीर बताएं। अब ये वो मौका था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन शुरू हो जाते हमारी तरह, बग़ैर सोचे समझे, हाँ हाँ मैं भी बताता हूँ। नहीं कहा, अच्छा मैं तुम्हें बताऊँगा, खाना आ लेगा ना उसके दौरान मैं बताऊँगा, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। और इसी दौरान खूबसूरत लफ्ज़ों में तौहीद की दावत दे दी। देखो अल्लाह कौन है, कहाँ से, जिसने तुम्हें ये दिया वो दिया, यानी उस मौके को गनीमत जानते हुए उनको अल्लाह की तरफ दावत दी। और फिर बाद में ताबीर बता दी कि देखो तुम में से एक मारा जाएगा और दूसरा दोबारा अपनी जॉब पे बहाल हो जाएगा। और बिल्कुल वही हुआ। जिसने ये देखा था कि उसके सर पे रोटियां हैं, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम साबित हो गया और दूसरा जो था वो बच के चला गया। अब जब वो जाने लगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करने लगा कि आपने तो मेरे लिए, मुझे यही कहा था, तो खैर आप बताएं कि मैं आपके लिए भी कुछ करूं। जैसे होता है दुनिया में, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बस इतना कह दिया कि अच्छा देखो बादशाह से मेरा जिक्र कर देना कि वो एक यूसुफ है, बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है, कुछ उसका आप भी देखिए, ज़रा उसकी फाइलों को खुलवाएं। कहा ठीक है, ज़रूर बताऊंगा। लेकिन हुआ क्या, बाहर गया तो भूल गया, शैतान ने भुला दिया और उसने जिक्र ही ना किया। बात आई गई हो गई। इसी दौरान जो उस मुल्क का बादशाह था ना, उसने एक ख्वाब देखा जो बड़ा उलझा हुआ लगता था देखने में। उसके अपने दरबारियों और पादरियों ने तो कह दिया कि ये तो बस उलझा हुआ ख्वाब है, इसकी कोई ताबीर नहीं है, ये बेकार बातें हैं। लेकिन बादशाह के दिल को तसल्ली नहीं हुई थी। उसने कहा नहीं, मुझे इसकी ताबीर चाहिए। जो ही उसने ताबीर की बात की तो वो जो कैदी नान भाई, जो भी शराब पिलाने वाला जो भी था, उसको याद आ गया कि जेल में मुझे भी ख्वाब की ताबीर बताई थी यूसुफ ने। खैर फौरन बादशाह को कहा कि मैं एक शख्स को जानता हूँ जो ख्वाबों की ताबीर जानता है, आप कहें तो मैं पूछूं। कहा जाओ। अब वो शख्स कई साल के बाद दोबारा यूसुफ के सामने है। ज़रा तसव्वुर में लाएं, हम होते और इतने साल बाद कोई दिखता जिसको हमने कोई काम कहा हो या कहा हो बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना, और वो हमारे पास आए और आते ही हमसे ख्वाब की ताबीर पूछे, तो हम क्या कहते हैं? पड़ गई जरूरत, आ गए ना काम, कहाँ थे मैं? नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि सिले से बेन्याज होते हैं लोग जो अल्लाह के दीन का काम करते हैं। उनको इसकी परवाह नहीं होती कि हमें हमें क्या मिल रहा है, उनको ये काम होता है कि हम क्या दे सकते थे और अभी हमने वो नहीं दिया। खैर ख्वाब की ताबीर पूछी, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बता दी कि ये ख्वाब बता रहा है कि तुम्हारे मुल्क में कहत आएगा और उसके बाद फिर खुद उसके अंदर कुछ जो फसल उगेगी उसको कुछ खाना कुछ महफूज कर देना, और फिर जो खुश्की के साल आएंगे उसमें वो तुम इस्तेमाल करना। उस शख्स ने जाके बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताई। बादशाह तो खुश हुआ कि ना सिर्फ ये कि ख्वाब की ताबीर है बल्कि उसकी तदबीर भी बता दी कि करना क्या है आगे से, कब बुला के लाओ इस शख्स को। अब ज़रा दोबारा सोचिए, बादशाह का शाही फरमान है कि इस कैदी को बाहर लेके आओ। यूसुफ ने निकलने से इनकार कर दिया, कहा मैं नहीं जाऊँगा, पहले मुझ पे लगे हुए इल्ज़ाम को धोएं, रिसर्च करवाएं, मेरी फाइलें खुलवाएं, ये जो मैं एक बुरे मुकदमे में फंसा था पहले बताएं कि मैंने वो किया था कि नहीं। जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं होगी मैं नहीं निकलूँगा। और अल्लाह के नबी सल्लम ने किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को खिराज तहसीन पहुँचाया, कहा कि अगर यूसुफ की जगह मैं होता तो बादशाह के कासिद के साथ फौरन चल पड़ता। लेकिन यूसुफ का सब्र देखिए, नहीं निकले, क्योंकि उन्होंने कल अल्लाह के दीन का काम करना था। और अल्लाह के काम करने वालों पे जब इल्ज़ाम लग जाते हैं ना, तो वो असल में दीन से रुकने के लोगों को मौके मिल जाते हैं। खैर, बादशाह ने मुकदमा खुलाया, वो औरतें दोबारा पेश हुई, यूसुफ की बीवी आई, वो अजीज़ मिस्र की बीवी सामने आई, सब के सामने फिर उसने इकरार किया कि मैं कहती हूँ कि कसूर मेरा था और यूसुफ सच्चा है। औरतों ने भी कह दिया, और उस वक्त फिर यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बाइज्जत रहा हुए। अब बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम की इतनी खूबियाँ जान चुका था, उसने ऑफ़र की कि आप अब मेरे साथ काम करेंगे और वजीरे ख़जाना के ओहदे पे मुकर्रर हो गए। आज के दौर में लफ्ज़ वज़ीर ही सुन के मुँह में पानी आ जाए, और कहाँ कोई वजीरे ख़जाना हो, मेरा लिए आजकल तो ज़रूरत ही नहीं होगी इसकी, ख़जाना ही नहीं रहता तो वज़ीर कहाँ से आएंगे। एक मिसाल है ना, यानी दुनिया के अंदर अगर दीन ना हो तो इंसान ऐसे वक्त में खुशी महसूस करता है, और जिसको दीन मिल जाता है वो जिम्मेदारी समझता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं अमीन बनूंगा, हफीज भी होऊंगा, लेकिन मैं यही काम कर सकता हूँ, मैं करूँगा। और फिर वो दौर जो था वो मिस्र की तारीख में बेहतरीन दौर बना, और वाकई वो हुआ, खूब फसलें होंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ अनाज जो थे वो खाने का लोगों का लाते निकालते, बाकी को उसी के खोशों में डाल के प्रिजर्व कर देते। और कुछ वक्त गुजरा तो उसके बाद खुशकी के साल आ गए। वो कैफियत थी कि पूरी इर्द गिर्द के पूरे इलाकों में कहत था, और मिस्र में सिर्फ अनाज था क्योंकि वो प्रिजर्व था। जब लोगों का ख़त्म हुआ तो उन्होंने इर्द गिर्द के मुल्कों से जमा होके आना शुरू हो गए कि हमें कुछ अनाज दीजिए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मशाल ऐसी प्लानिंग की हुई थी कि जिसकी बुनियाद पे ना सिर्फ जाए कि मिस्र के लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाए बल्कि बाहर वालों को भी दें। ये जब खबर फैली तो कनान, जो मिस्र के साथ ही था, वहाँ से यूसुफ के वो 10 भाई भी अनाज लेने के लिए आ गए। अच्छा, बताएं कि आप में से कितनों ने कहानी सुनी हुई है? सब ने सुनी होगी ना, हैं? फिर तो सुनाने की ज़रूरत नहीं है, हैं? कहानी में मज़ा आता है, अमल की बातों में नहीं है। खैर, यूसुफ के भाई आए, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको पहचान गए। अब क्या होता आज, ज़रा सोचें, आ गए आज, पकड़ लो इनको, जेल में डालो, कैद, कत्ल का मुकदमा इन पे चलाओ। नहीं, कहा पकड़ लो, नहीं कुछ नहीं, कहा दो बल्कि पैसे भी इनके वापस रख दो, इनकी पूंजी, जो इनकी पूंजी थी, जो पैसे थे, वो भी इनके सामान में रख दो ताकि वापस आएंगे। वो गए घर, बाप को बताया कि वो तो बड़ा फैयाज है भाई, और वो यूसुफ को नहीं पहचाने, कैसे पहचानते, उन्होंने तो यूसुफ को अपनी तरफ से पस्तियों में गिरा दिया था, लेकिन अल्लाह ने उसी कुएं से निकाल के उनको तख्त पे पहुंचा दिया। ये अल्लाह की हिकमत है। वमा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह, जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, वो होगा जो रब चाहेगा। वो कहते हैं ना, किसी के करने से कुछ नहीं होता, अगर अल्लाह कुछ देना चाहे कौन रोकेगा। अल्लाहुम्मा ला मानी अली मा आतैत वला मोती अली मा मनात। खैर, किस्सा मुख्तसर के 2-3 दफ़ा कर करा के भाई आते गए, बिनजामीन भी आ गए जो छोटे भाई थे, और उसके बाद फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल था कि अब मैं अपने बाप को मिलूं, तो शर्त लगा दी कि अब अगली दफ़ा तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा जब तक कि तुम बाप को नहीं साथ लेके आते। कहा बाप तो नाबीना, यूसुफ के गम में रो रो के आंखें चली गई थी, रोते रहते थे, अभी तक भूले नहीं थे। ऊपर से बिनजामीन का गम लग गया, उसके बाद यहूदा का गम लग गया। खैर, बेटों ने आके कहा कि चलिए। यूसुफ ने कहा, अच्छा उनकी आंखें नहीं है, ये कमीज़ है, ये ले जाए, ये उनकी आंखों पर डालना, मौजज़ा था, अल्लाह ताला इनको आंखें दे देगा। अब आप कहेंगे यूसुफ की कमीज़ का कोई मौजज़ा था? नहीं, कमीज़ की वजह से तो आंखें गई थी, जब खून में लुथड़ी हुई देखी थी। आज वही कमीज़ अगर उनके आंखों पे जा रही है तो असल हुक्म तो अल्लाह का था। खैर, बाप की आंखें आ गईं, और इस तरह फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के 60-70 अफराद मिस्र आ गए। वहाँ फिर जान पहचान हुई, माफ़ियाँ मांगी गई, यूसुफ ने किसी को एक लफ्ज़ नहीं कहा। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई पकड़ नहीं। यग़फिरुल्लाहु लकुम वहुवा रहमुर रहीमीन, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे कि वो बड़ा रहम वाला है। ना सिर्फ ये कि खुद माफ़ किया बल्कि कहा अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करे। और इस तरह से फिर वो सारे कुंबे के लोग जो थे वो यूसुफ के साथ मिस्र में रहने लगे। अब वो मौका आता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे मामले पूरे हुए, बाप भी आ गए और वो ख्वाब भी सच्चा हुआ। उस दौर में सजदे ताज़ीमी जायज़ था, इज्जत का सजदा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने भाई भी झुके, माँ बाप भी झुके। खैर फिर उनको कहा कि अब आप इधर ही रहेंगे और जो भी काम दिया गया। इस मौके पे फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए एक दुआ मांगते हैं कि रब्बी कद आतई तनी मिनल मुल्की वालम तनी मिन तावील अहादीस फातिर अस्समावाति वल अर्द अंत वली जी फि दुनिया वल आखिरा तवफ्फनी मुस्लिमम वल हकनी बिस्सालिहीन। ए अल्लाह, तूने मुझे मुल्क अता किया और तूने मुझे ख्वाब की ताबीर सिखाई। ए आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखरत में मेरा वली और कारसाज़ है। तू मुझे इस्लाम की हालत में फौत कर और नेकों में मिला दे। ऐसे मौके पे अमूमन इंसानों के रवैये क्या होते हैं? दुनिया की नेमतों को पाके फलने फूलने लगते हैं ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम हर नेमत को अल्लाह की तरफ डालते हैं और अल्लाह ताला की तरफ डाल देते हैं कि जो कुछ मिला वो मुझे अल्लाह से मिला। अब यही कहानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक के ज़रिए से सुनाई गई। वही के ज़रिए ये किस्सा आया ना। अब हुआ क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बास कहते हैं कि यूसुफ ही ये बात कहते हैं, क्या कुल हाजिही सबीली अदउ इलल्लाह, ये है मेरा रास्ता और मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। ये है वो मिशन, वो मनहज जो अम्बिया कराम को दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम हो या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका एक ही गोल था, नूह अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी की एक ही दावत थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है उसी को मानो। और अपने दौर का नबी एक रोल मॉडल था जिसको लोग देखते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जब गए तो यही जिम्मेदारी उम्मते मुस्लिमा को मिल गई। कुन तुम खैरा उम्मत नुखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी वतन हौन अनिल मुनकर। तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और मुनकर से रोकते हो। ये है वो पैगाम जिस पे अमल करने के बाद उम्मत को एक लकब मिला, और वो क्या था? वजअलनाकुम उम्मतं वसता, हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया। वसत क्या होता है? वास्ता, वसीला, बंदों को रब से जोड़ने वाली। ये एजाज़ था, ये ऑनर थी उम्मत मुस्लिमा को। इसका रास्ता कहाँ से गुज़रता है? इल्म से गुज़रता है। इक्रा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक। आज मैं और आप और हम सब बड़े आरामदेह माहौल में बैठे ये बात सुन और सुना रहे हैं। मैं आपसे सवाल करूंगी कि मुसलमान होने के नाते या मोमिन होने के नाते हमारा गोल क्या है? चले इसको और सिंपल करते हैं कि आपका क्या गोल है। हर एक सोच ले अपने पास बैठे के, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? सुबह हुई, शाम हुई, रात हुई और ज़िंदगी इसी तरह तमाम हुई, हमारी ज़िंदगी किधर जा रही है? क्या हम बर्फ़ से भी ज़्यादा तेज़ी से नहीं पिघल रहे? क्या हमारी औलादें हमारी कुछ तवज्जो की मुंतज़िर तो नहीं? क्या आज हमने भी अपने बच्चों को वही पैगाम दिया जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके बाप ने दिया, जो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत हसन और हुसैन को दिया, जो अफरा ने अपने बेटे मुअव्विज़ और मास को दिया, और जो अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे को दिया? वो कैसी माएँ थीं कि बेटों को भेजती थी अल्लाह के रास्ते में और कहती थी कि देखो मुझे ये खबर ना मिले कि तुमने पुश्त पे गोली खाई है, यानी तुम मैदान जंग से भाग रहे थे। हाँ मुझे ये पता चले कि तुमने सीने पे गोली खाई है। तुम मुजाहिद थे, और मुजाहिद कोई तलवार पकड़ के नहीं बनता। यही मिसकॉन्सेप्शन है जिसने आज मुसलमानों को परेशान किया हुआ है। जिहाद शुरू होता है जब हाथों में कलम आते हैं। इल्म से ये सफ़र शुरू होता है। जिहाद तो उनसे किया जाएगा जो आपके बताने बुलाने के बावजूद दीन की तरफ आई नहीं, लेकिन जिन बेचारे नॉन मुस्लिम्स को हमने दीन पहुंचाया ही नहीं, जिनको पैगाम दिया ही नहीं, क्या हम हक रखते हैं उनको मारने का? क्या आज उम्मते मुस्लिमा के हाथों में तलवारों देने की ज़रूरत है या कलम देने की ज़रूरत है? वो कलम जिसकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खाई कि नून वल कलम ही वमा यस्तुरून, और वो कलम जो सबसे पहले पैदा किया गया, शायद आप में से बहुत सारों को पता होगा, इस कायनात की सबसे पहली चीज़ जब दुनिया बनी थी ना, जानदार बेजान चीज़ों में सबसे पहली चीज़ कलम थी। अल्लाह के नबी सल्लम की सही रिवायत है कि अल्लाह ने कलम पैदा किया और कहा उक्तुब लिखो, और उसने इंसानों की तकदीरें लिखी। तब से लेके क़यामत तक के वाक़यात इस कलम ने लिखे। ये वो कलम है कि जिसके चलने की आवाज़ें अल्लाह के नबी ने मेराज के सफ़र में आसमानों पे सुनी थी, कि फ़रिश्ते लोगों के तकदीरों के फ़ैसले लिख रहे थे, कहीं फ़रिश्ते लोगों का अजर लिखना चाह रहे थे। और ये वो कलम है जिसकी बात पहली वही में आई, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। आज कितनों के हाथों में ये कलम है? आज माँ के हाथ में क्या है? चमचा, छुरी, कांटा, तवा, प्लेट, डिश। मैं कहीं भी गलती करूं तो आपको पूरा हक है हाथ खड़ा करने का। आज की अमूमी औरत का ज़्यादा वक्त कहाँ गुजरता है? अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उनको तरह तरह के खाने पका के देने के लिए, सच है कि नहीं? आज की माँ अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करती है? उस बच्चे को रोज़ उसकी पसंद की चीज़ें खिलवा के, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहना के, उसको सैर के लिए ऐसी जगहों पे ले जा के जहाँ से आके वो बिल्कुल ही काबू में ना रहे। आज के बाप कहाँ हैं? सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, एक ही है ना गर्दिशें दौरा माल के कमाने की तरफ, और वो कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि माल थोड़ा बढ़ता है, ज़रूरत उससे ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। कल तक अगर 5 कमाते थे तो आज 25 कमा के भी बुरी नहीं पड़ती। आप ये बताइए कि उम्मत का मुकद्दर कब संवरेगा? जब इंसानों की ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होता ना, तो वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। गोल ना होना बंदे को डिस्ट्रैक्ट करता है। आज उम्मते मुस्लिमा को पता ही नहीं कि उनका गोल क्या है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और हासिल कुछ भी नहीं होता। हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। और बात सफ़र तो अभी मैं इसको दुनियादार के नाते से करके फिर आगे थोड़ी सी दीन के नाते से भी बात करूँगी। दुनियादार को नहीं पता कि मेरा गोल क्या है। ये बच्चा जो मेरी गोद में आज आया, अल्लाह ने क्यों दिया? हम औलाद मांगते हैं तो क्या कहते हैं? हाँ, अल्लाह कोई वारिस पैदा हो जाए, बेटा देना, कारोबार संभालेगा। चलो 5-6 बेटे हो गए तो एक बेटी भी आ जाए, टेस्ट चेंज होगा। कहीं उसमें कोई ऐसा मामला है कि अल्लाह बेटा देना, तेरे रास्ते के सिपाही बनेंगे, उम्मते मुस्लिमा की कसरत पे फ़ख्र करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए औलाद देना मुझे। किधर घूम रहे हैं? इधर उधर उधर उधर। नतीजा क्या होता है? ख्वाहिशें ऐसे हैं जैसे हमें हवाओं की तरह उड़ाती हैं। मैं एक रिपोर्ट सुन रही थी, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, हाल ही में एक बहुत मशहूर सिंगर का इंतकाल हुआ। इंडिया का एक अखबार था तो उसमें ये खबर छपी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा अपने वक्त के हिसाब से, अपने फील्ड और प्रोफेशन के अतबार से फेमस, वो जिससे लोग मोहब्बत करें और वो जिसके पास माल हो, ये वो शख्स था। लेकिन जब दुनिया से गया तो 500 मिलियन डॉलर्स का लोन था उसके सर पे। ये होती है डायरेक्शन लेस ज़िंदगी की अलामतें। पता ही नहीं भाई कहाँ गया माल। उसकी रिपोर्ट लिखी हुई थी कि उसने अपने पे फेस की प्लास्टिक सर्जरी पे कितने लाखों लगवाया। एक शादी की, एक औरत से, वाइट औरत से शादी की क्योंकि उसको शौक था वाइट होने का। उस औरत ने एक ख़ास वक्त में के बाद तलाक मांगी। 25 मिलियन डॉलर उस औरत ने उसे तलाक की सूरत में हासिल किया, और इस तरह वो शख्स लाखों के, मिलियंस के कर्ज़े में डूबा। ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना, कहाँ हैं आज वो सारे? जिनके लिए दुनिया में थे। ये तो एक दूर की कहानी है ना। हम अपने आप को पूछें, हम में से किसी की, यानी अपने खानदान, अपने दोस्तों में जिसकी लास्ट डेथ की खबर हमने सुनी हो, सोच लें उसको। इसी तरह कल हमारी भी खबर आ जाएगी, क्या छोड़ के गए। किसी को भी सोचें, कोई आपके खानदान के, कोई दोस्तों में, साथियों में। अमूमन एक खबर छपती है अखबारों में, फलां फौत हुआ, अपने पीछे एक बेवा और चार सोगवार छोड़ गया, लवाहकीन में ये थे। फिर जब दौलत की बातें होती हैं तो इतने घर और इतनी इतनी फैक्ट्रियां छोड़ गए, चले गए ना। लेकिन हम ये सोचें, वो तो गए, उनको तो छोड़ दें। यानी वो सवाल जिस पे इस वक्त अब हमने अपने आप को फोकस करना है, कि अगर आज मेरी भी ऐसी खबर आ जाए तो मेरे पीछे क्या खबर आएगी। वट आई एम लीविंग बिहाइंड, मेरे पीछे क्या है, मैं क्या छोड़ के जा रही हूँ। क्या मैंने माँ होने की जिम्मेदारी पूरी कर दी? क्या मैंने बीवी होने की जिम्मेदारी, एक उम्मते मुस्लिमा की फ़र्द होने की जिम्मेदारी पूरी कर दी? हर एक पूछता रहे, सोचता रहे। सारी बातों को जब आप जमा करेंगे ना, तो पहली बात तो ये है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी बिगड़ा ज़्यादा नहीं, इसलिए कि हम जिंदा हैं। जब तक इंसान जिंदा है ना, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में मौके लाता है। मैं एक पूरा दर्स तैयार किया था, किसी मौके पे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, कि मुसलमानों ने गलती कहाँ से खाई। आज आप देखें तो हर बंदा जो है ना, इस शिकवे का शिकार है कि हम मुसलमानों पे जुल्म है, हम जलील हैं, हम गलत हैं। पूरी दुनिया में शिकायती रवैया है। वजह क्या है कि हम वो समझते नहीं है कि हमने गलती क्या की। हर एक डिफरेंट बातें करता है, तशख़ीस गलत होती है ना तो इलाज भी गलत होता है। लेकिन पहली गलती जो उम्मत मुस्लिमा से हुई है, अब अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का एक ज़िम्मेदार फ़र्द होते हुए सोचें, मैं भी और आप भी। क्या दो बातें करूंगी सिर्फ, इस पे बात को ख़त्म करूंगी। पहली गलती जो आज के मुसलमान से हुई, उसने ये गलती खाई कि जिसने एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, जन्नत में जाएगा। मारूफ रिवायत है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। ये हदीस सबको सुला देती है और फ़ख्र करते हैं, शुक्र है मुसलमान है। हालांकि हमने ये नहीं जाना कि काला और आरफा में फ़र्क क्या है। कलमा पढ़ने की चीज़ नहीं है, कलमे की मार्फत वो बड़ी चीज़ है। अल्लाह को पहचान के एक दफ़ा पढ़ा हुआ भी बग़ैर पहचान के 1,25,000 पढ़े से बोझल होगा। क़यामत के दिन सिर्फ एक टुकड़ा इंसान के नामे अमाल को बोझल करवा देगा। अल्लाह ताला हमें ये नहीं कहता कि तुम बग़ैर सोचे समझे कलमा पढ़ो। अल्लाह ताला कहते हैं इस कलमे के तकाजे पूरे करो। सूरत मायदा की आयतें हैं 84 और 85 में इसकी दलील है। अल्लाह ताला कहते हैं फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा कालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा। बस अल्लाह ने उनको पहुंचा दिया उन जन्नतों में, यानी सवाब दिया उस कौल के बदले। लेकिन वो कौल कौन सा था? मिम्मा अरफू मिनल हक, उससे पहले ये बात कर दी कि वो हक को पहचान गए थे। तो पहली गलतफहमी जो आज हम अपनी दूर करके जाएं, लिख लें, जिसको मर्जी कह दें, पूरे शौर से बात करूंगी कि सिर्फ कलमा पढ़ने से जन्नत नहीं मिलेगी, फिर तो अब्दुल्ला बिन उबई को भी मिलेगी। फिर तो और भी बड़े पढ़ते थे तन्हाई में और सामने नहीं पढ़ते थे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कायल, कायल कहते हैं कहने वाले को, काला का इलुम, कायले कलमा के लिए नहीं है जन्नत, हाँ आरिफ कलमा के लिए, जिसने मार्फत हासिल की। हम मुसलमान होने के बावजूद अपने अकायद में इतना शिर्क पाते हैं, हमें वो कलमा कहाँ बचाएगा। दूसरी खता जो गलती मुसलमानों से हुई वो क्या है, कि उन्होंने कुरान को किताब हिदायत नहीं समझा, उसको बरकत की किताब समझा, वजीफ़ों की किताब समझा, जिन्नों और भूतों को भगाने वाली किताब समझा। और उन्होंने समझा कि बस इस किताब के ख़त्म पे ख़त्म करते जाओ, सुबह उठ के एक दो रुकू पढ़ लो, बच्चा बड़ा होने वाला हो तो उसको पकड़ के मस्जिदों में ले जाओ कान पकड़ के, और मौलवी साहब से कहो इसको जल्दी से कुरान पढ़ा दो ताकि हमारा मुर्दा बख्शा जाए। मैंने लिटरली माँ को बातें करते हुए सुना है कि बच्चा कुरान पूरा पढ़े, वो कहती है शुक्र है अब हमारा फ़र्ज़ पूरा हुआ, और वो बच्चा जो उसको समझता नहीं है वो फिर बाद में जब माँ की बात नहीं मानता तो फिर माँ कहती है हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी इनकी, इनके पीछे इतना कुछ खुलाया, ये आज हमारी बात ही नहीं सुनते। आज की नस्लों का मसला क्या है कि हमने उनको कुरान तो पढ़ाया समझाया नहीं, और हमारा मसला क्या कि हमें खुद भी समझ नहीं आती थी। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ये शिकवा करेंगे। सूरह फुरकान की आयत 30 में आता है, वक़ाल रसूलु या रब्बी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ए मेरे रब, ये है वो मेरी कौम जिसने कुरान को छोड़ा हुआ था। देखिए अंदाज इतना सख्त, ऐसे लग रहा है एक एक को दिखाएंगे, ये है मेरी वो कौम। और वो लोग जो नबी की सिफारिशों की उम्मीद में पहुंचे हुए थे वहां, उनकी उनके खिलाफ नबी की ये एक किस्म की आप कह लें कि नबी का दावा है कि ये कुरान को छोड़ने वाली कौम है। कुरान को छोड़ना क्या है कि इसको हिदायत की किताब समझे बगैर पढ़ना। हम सब इस वक्त अगर अपने दिल में एक नियत कर लें कि अल्लाह एक दफ़ा मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक दे, ऐसा कुरान जो मेरे दिल की दुनिया बदल दे। देखिए कि कुरान जब समझ आता है ना फिर आंखों से आंसू निकलते हैं। निजाशी एक ईसाई बादशाह था, हबशा में बैठा हुआ था अल्लाह के नबी से कितनी दूर, और चंद आयतें कुरान की सुनी तो आंखों से आंसू निकले। व इज़ा समीउ मा उन्ज़िला इला रसूली, आंखों से आंसू आए क्यों कि मिम्मा रफू मिनल हक। रमज़ान हमारे करीब है, हमने बहुत सारे प्लान्स किए होंगे इंशाल्लाह, बहुत सारे लोग करते हैं। रमज़ान उन महीनों में से है कि जिसमें बिगड़े से बिगड़ा शख्स भी कोशिश करता है कि नेकियों का कुछ तोशा जमा कर ले। इस दफ़ा का रमज़ान इस शऊर के साथ मनाने की और गुजारने की कोशिश करनी है हमने कि हम इसके लफ्ज़ों को समझें। कितने लोगों के दिल में ये ख्वाहिश आ रही है कि हम कुरान को समझें अपने लफ्ज़ों में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गवाह रहे, अब आपकी ख्वाहिश है तो फिर अगर अल्लाह ताला आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर दे तो फिर तैयार है इसके लिए। दो प्लान्स हैं हमारे पास, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। दोनों सुन लें, मैं मुख्तसर सा बता देती हूँ, फिर इंशाल्लाह जो भी ये लोग हैं ये आपको बता देंगे। देखिए शॉर्ट टर्म किसको कहते हैं, मुख्तसर वक्त का प्लान, यानी फ़ौरन उसका फ़ायदा आपको दिखेगा, जैसे आज आप कोई पैसे देते हैं चीज़ आपके हाथ आ जाती है। लॉन्ग टर्म क्या होता है, पैसे डालते जाते हैं लेकिन वो एक ख़ास वक्त के बाद नफ़ा हासिल होता है। शॉर्ट टर्म क्या है कि इंशाल्लाह ताला हम लोग रमज़ान के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, कल मंडे है, कल का दिन छोड़ के यानी यहाँ लोग को कह रही हूँ, ऑनलाइन पे जो सुन रहे हैं इंशाल्लाह कल भी होगा कुछ इस वक्त में, लेकिन ये ऑन साइट जो लोग यहाँ नॉर्वे में बैठे सुन रहे हैं, कल नहीं परसों से इंशाल्लाह ताला हम लोग रमज़ान का स्पेशल प्रोग्राम शुरू करें। सिर्फ़ एक महीने की उसकी मुद्दत है, 32 डेज़ है। अभी ये जिन लोगों ने कोर्स किया और आपको बता रहे थे, इनका भी तकरीबन 4 वीक ही थे ना, और आप देखिए ये आपने सुन ही लिया कि इनके क्या फीलिंग्स थी और इन्होंने क्या पाया, हालांकि अभी बहुत कुछ रह गया हमारा पाने को लेकिन सीखा। आप सब भी यहाँ बैठे हुए लोग और जो घरों से सुन रहे हैं, इस एक महीने में बहुत कुछ पा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ट्यूसडे को ये नॉर्वे का जो टाइम होगा वो 11 से 1:30 होगा, और जो यूके में टाइम होगा वो 10 से 12:30 होगा, और ऑनलाइन पे जो लोग सुन रहे हैं उनको फ्लायर तो उनके पास मौजूद है। इंशाल्लाह ट्यूसडे और वेनसडे दोनों दिन हम लोग, पहले दिन तो पूरा दौरे कुरान का थीम क्या है, हम कुरान क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे, और उसमें हम बेसिकली ये बहुत ऐसा सफ़र है इस दफ़ा इंशाल्लाह, कम से कम पढ़ा लिखा बंदा भी बग़ैर कुछ लिखे और पढ़े इसमें से बहुत कुछ ले सकता है। गेटिंग क्लोज़र टू अल्लाह, अल्लाह ताला का कुर्ब उसकी निशानियों के नाते से कितनी किस्म की होती है वो इंशाल्लाह हम ट्यूसडे को देखेंगे। तो ये 2 दिन, फिर वेनसडे को हम रमज़ान की असल स्पिरिचुअलिटी और उसके कुछ मसाइल पे बात करेंगे। उसके बाद थर्सडे से लेके रमज़ान के अगले दिनों में इंशाल्लाह ताला एवरी डे हम एक सपारे का तर्जमा और उसके अंदर से यानी उसकी मुख्तसर जो तफसीर जो हमारे लिए इंशाल्लाह ताला फ़ायदेमंद होगी वो करेंगे। यानी मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप में से जिन लोगों ने कभी ये नहीं पहले किया, हाथ खड़ा करेंगे जिसने कभी ये चीज़ पहले नहीं की, पूरा कुरान एक महीने में, माशाल्लाह यानी समझ के सीख के। आप जितने लोग सामने बैठे हैं आप सब कर चुके हैं एक दफ़ा भी तर्जमे के साथ, तो हाथ खड़ा करें ना। फिर किसने पूरा कुरान अभी तक नहीं अपने अपनी ज़ुबान में समझ के पढ़ा? एक वो होता है जब तर्जमे वाले कुरान से पढ़ते हैं, उसमें तो आप बहुत कुछ खो जाते हैं। ठीक है, तो फिर मैं यही कहूँगी कि आज मैं यही ये बात आपको कह रही हूँ, लिख लें जहाँ मर्जी, कि आपको खुद नहीं पता कि आप क्या लेंगे। जिस दिन कि कोई आता है ना अल्लाह के कलाम की तरफ, उसको ये पता ही नहीं होता कि मुझे मिलना क्या इससे। इंशाल्लाह ताला आप खुद ही फील करेंगे कि इसमें एक दफ़ा तो रब की मर्ज़ी समझ आ जाएगी ना। मैंने जिन दिनों कुरान पाक से शौरी सफ़र शुरू किया था ना अपना, तो मुझे याद है आज भी वो फीलिंग्स जो मेरे जहन में उठते बैठते सवालात आ रहे होते थे। वो कहते थे, मेरे दिल में क्या आता था कि ये कुरान है क्या, आखिर इसमें क्या कहानी है, इसमें जो शायरी है, इसमें कोई नसीहतें हैं, यानी तजस्सुस जिसको कहते हैं ना, ये मेरे जहन में शुरू हो गया हुआ था। हालांकि अल्लाह का शुक्र है बचपन से कुरान पढ़ते पढ़ाते कोई ऐसा जगह नहीं थी कि जहाँ कोई कुरान फरामोशी का दौर था, कुरान के अंदर थे और यही समझते थे माशाल्लाह हमसे अच्छा कौन है। मैं खुद कहती हूँ, आज भी कहती हूँ, कोई कहते हैं ना आप तो बहुत अच्छे काम करते हैं, आप तो वो बहुत अच्छे हैं, तो एक तो दिल कांप जाता है सुन के, खौफ आता है, और दूसरा मैं कहती हूँ आपको क्या पता, हम तो अच्छे तब थे जब कुरान नहीं थे पढ़े हुए। कोई हमसे पूछता हम कितने अच्छे हैं, लगता था हम जैसा कौन है। एक पतला सा दुपट्टा सर पे क्या गले में डाल के भी कहते थे देखो उनसे तो अच्छे हैं ना जो इसके बगैर बैठे हुए। एक गज का कपड़ा भी बोझ लगता था, ऐसे लगता था सारी दुनिया मुझे ही देख लेगी। अच्छे तो तब थे, अब तो बुरे हुए, हर दिन अपनी खामियों पे नजर है। कोई दिन नहीं जो बंदा अपने ऊपर मलामत करके ना सोए कि तुफ है तुझ पे, तूने आज के दिन में भी वो नहीं किया जो तू कर सकता था। ये आगही का सफर है, रब को पाने का सफर है। नहीं पाना चाहते उस रब को जिसने इतना कुछ दिया, क्या कुछ दिया हुआ ज़रा उसको अपने जहन में ला के तो सोचे। अपनी गोदों में खेलते हुए बच्चों से लेके अपने खूबसूरत सजे सजाए घरों को देखें, इस कायनात को ही देख लें, क्या कुछ नहीं उसने दिया। नहीं दिल चाहता कि उसके बारे में सोचें कि वो कौन है। हमें कोई बहुत प्यारा गिफ्ट मिले मेल में, ये ना बताओ कहाँ से आया, कुछ नहीं लिखा, बस ये लिखा आपके लिए, तो क्या दिल में आएगा। एक दफ़ा पता चल जाए ये दिया किसने, ये भेजा किसने। इसी तड़प का पैदा होना है, मार्फत इलाही का पैदा होना। इंशाल्लाह अपने इस सफ़र में हम अपने रब की मोहब्बत को महसूस करेंगे। तो मैं आप सब साथियों से इस चीज़ की, यानी मैं कोई इल्तिजा नहीं करूँगी, मुझे रिक्वेस्ट लफ्ज़ बिल्कुल नहीं पसंद। ये तो एक सर्विस है जो हम आपको दे रहे हैं, ये तो ऑनर है, ये तो इज्जत है। हम आपको एक मौका दे रहे हैं, आप में से जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ पे यही इंतज़ाम किया गया है कि आप लोग सब जो करीब के लोग हैं वो अपने अपने करीबी जगहों पे सुने, जैसे इस मस्जिद में हो रहा है। इंशाल्लाह ताला यहाँ से बाद में तो डिटेल्स आपको रिसेप्शन से मिल जाएंगी। आप लोग अपने नाम लिखा के जाएं कि आप कहाँ कहाँ होंगे। अभी जब ये बात ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो भी लोग इसको करें तो एक दफ़ा आके माइक पे बता भी दें किस किस इलाके में कहाँ हो रहा है। और जैसा कि कहा गया था कि एक पेपर पे लिख लेंगे तो वहाँ लगा दें, लिख के सब वहाँ से नोट कर लेंगे कि शहर में डिफरेंट जगहों पे आप लोग बैठ के सुनेंगे। मैं इंशाल्लाह इसी तरह आपसे बात करूंगी, और अल्लाह ने चाहा तो आप मौका मिल गया तो आप मुझे देख भी लेंगे। तो इस ये है एक छोटा सा कोर्स जिसको इंशाल्लाह हम तकरीबन 18-19 रमज़ान यानी ये सितंबर तक चलेगा। अब ये तो वो है जिसमें इंशाल्लाह क्विकली आप करेंगे, और मैं इसमें आप सब माओं को भी और जो बच्चियां स्कूलों में हैं या वट एवर सबको इसके लिए स्पेशली जो आगे करना चाहते हैं उनको तो ये मस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे फिर आपके अंदर जज्ब पैदा होगा इस बात का कि आगे आप और सीख सकें इंशाल्लाह ताला। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इससे भी इंशाल्लाह अगला स्टेप है वो क्या है कि अल्लाह की तौफीक है, सिर्फ़ अल्लाह की तौफीक है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, किसी की कोई ताकत नहीं, कोई इसबाब नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जिस रब ने पहले कराया वो बाद में भी कराएगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए भी हम यहाँ एक कुरान पाक के सर्टिफिकेट कोर्स का यानी इंशाल्लाह ताला आगाज़ करेंगे रमज़ान के बाद, कि जिसमें ज़िंदगी के मुख्तसर से वक्त को आप लगा के बहुत कुछ सीखेंगे, वो है लफ्ज़ी तर्जमे के साथ। रमज़ान में जो आप करेंगे ना ये बामुहावरा है, आप सबके सामने कुरान पाक खुले हुए होंगे, कुरान भी एक ख़ास होगा, वो भी इंशाल्लाह आपको ये लोग बता देंगे। जिनको वो चाहिए उनको पहले से लिखवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही लिमिटेड हमारे पास पहुंच रहे हैं, जो देर से लिखाएंगे उनको इंशाल्लाह बाद में मिल जाएगा। लेकिन जो इसके बाद वाला कोर्स है ये वो कोर्स है कि जिसके बाद आप सिखाने के काबिल हो जाएंगे, कितने लोगों का दिल चाहता है कि वो सिखाएं भी लोगों को। माशाल्लाह, सीखने वाले बहुत से होते हैं ना, सिखाने वाले थोड़े होते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये जो पहला कोर्स है ना, इसमें आप सीख लेंगे आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, फ़राइज़ पता चल जाएंगे, अच्छी माँ कैसे बनते हैं, अच्छी बीवी कैसे बनते हैं, बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। बच्चियाँ तो वो ये सीख लेंगी कि माँ बाप के साथ कैसा मामला करना है, हमारे उनके क्या फ़राइज़ हैं, हक लाइक, इस तरह की बातें। लेकिन ये जो अगला कोर्स है ना, ये इंशाल्लाह ताला इस लेवल का है कि इसके बाद फिर आप सिखा सकेंगे। और मेरा ख्याल है कि जो लज्जत अल्लाह की बात सीखने और सिखाने में मिलती है, उसको दूसरा तो कोई महसूस ही नहीं कर सकता। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला डिटेल्स आपको ये लोग दे देंगे। आप में से जितने लोग समझते हैं, अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 1.5 साल लगेगा उसमें, और ये उससे बहुत थोड़ा है, बल्कि उसका श्रेय अशीर भी नहीं जो MA तक पहुंचने में हमारे बच्चे यूज़ करते हैं स्कूलों में, कॉलेज। आप सब में से खवातीन पढ़ी लिखी होंगी माशाल्लाह। मैट्रिक करने में कितने साल लगते हैं, कोई बताए? मैट्रिक करने में कितने साल लगते हैं? दस तो लगते ही, और ऊपर के वो शुरू के KG और जो था 13-14 साल। ये बताइए कि आज के दौर में मैट्रिक पास की कोई अहमियत है? जॉब मिलती है, अच्छी पे मिलती है, फ़ख्र से बताते हैं लोग मैट्रिक किया हुआ है। कितने साल दिए आपने अपनी ज़िंदगी के? 12 साल। चले FA पे आ जाएं, दो और डाल लें, MA पे आ जाएं, दो और डालें, BA पे, MA पे आ जाएं। लेकिन जिस चीज़ों को पाने में 10-12 साल लगे, अल्लाह की किताब हमसे एक मुख्तसर वक्त चाहती है देने के लिए। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सभी तो शुरू करें फिर, आज ही कर लें शुरू। सिर्फ आते हैं वहीदा, इजाज़त है, शुरू कर लें। हम आपका सारा प्रोग्राम नीचे कर लें, हम यहाँ खोलते हैं सिर्फ आते हैं। पढ़ने वाला मौजूद, पढ़ने वाले माशाल्लाह इतने मौजूद हैं, पढ़ाने वाला मौजूद है, नोटबुक्स मौजूद हैं, तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, है? लेकिन अभी इंशाल्लाह, ये तो डरा दिया मैंने इन लोगों को जी। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि पीछे इंशाल्लाह, अब थोड़ा सा इनको ब्रेक दीजिए इस चीज़ के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा अपनी जगह से उठे के पीछे रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें हैं ये लोग आपकी हेल्प करते हैं। तो आप इस सफ़र में अपना कदम बढ़ाए, देखें किसी को नहीं पता कल वो ज़िंदा भी रहेगा कि नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ये जो दस्तखत होते हैं ना, ये अल्लाह के रास्ते में इंशाल्लाह जमा हो जाते हैं। और फिर कोई सवाल जवाब है आपके पास, क्या होगा, कितने दिन होगा, क्या करना है, पूछ लें, या आपको बता भी जा सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये है कि जगह के लिए हम लोग देख रहे हैं। मैं ही बता देती हूँ जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत सारे लोग पूछेंगे, तो बेहतर है कि उसमें ये कि पहली बात देखें कि आप इस शहर के लिए, इसी शहर के अंदर होगा, यानी वो कहीं स्पेन में जाके नहीं होगा कोर्स, बस ये समझ लें। समझ गया ना? यानी जहाँ भी प्रॉपर जगह मिल जाएगी। और हम ये भी करेंगे कि जिस तरफ का रजिस्ट्रेशन ज़्यादा आएगा, आप लोग जो अभी अपने अपने नाम अपने फॉर्म हमें देंगे, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला, ऑफ कोर्स हमने रेगुलर्स को फोकस करना है, लिसनर्स पे बाद में आते रहेंगे, अगर जगह खुली हुई मोस्ट वेलकम, एवरीबॉडी कैन कम आए। लेकिन फिर उनकी हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती उन, यानी लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको फुल सर्विस देते हैं, उनके ग्रुप्स बनेंगे, उनको बुक्स मिलेंगी, फिर उनका आगे कोई इसके साथ साथ जो असाइनमेंट्स और इस तरह होती हैं। लेकिन लिसनर्स गेस्ट की तरह आए बैठे, मोस्ट वेलकम, कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन ये है कि जिधर के लोग ज़्यादा होंगे और जहाँ अल्लाह का हुक्म है, आप भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। इस वक्त हम एक जगह की तलाश में, इंशाल्लाह हम उसको लेना चाह रहे हैं, कोई मुनासिब सी जगह ऐसी कि जिसमें हम अपना काम सहूलत से कर सकें। इरादा यही है कि मंडे से फ्राइडे होगा, इंशाल्लाह आप शुरू करें। अल्लाह ना करे अगर किसी के लिए मैनेजेबल ना हुआ, तो फिर हम इसमें एक दिन कम कर देंगे। अगर 5 दिन करेंगे तो इंशाल्लाह 18 मंथ में पूरा हो जाएगा, अगर एक दिन कम किया तो वो दिन ऊपर चले जाएंगे। टोटल तकरीबन 320 के करीब लेसन्स होते हैं, वर्किंग डेज जिसको कहते हैं। कंटिन्यूस करें विदाउट छुट्टी तो 1 साल के अंदर भी हो जाता है। और बाकी और कोई सवाल, कोई सवाल है आपके जहन में जी? इंशाल्लाह इसका फ्लायर बन जाएगा रमज़ान के, एक थोड़ी छुट्टियां देंगे रमज़ान के बाद आपको, ईद के लिए, घूमने फिरने के लिए, फिर इंशाल्लाह उसके बाद शुरू होगा। आज मैंने रमज़ान की कोई बात नहीं की इसलिए कि मुझे उम्मीद है कि आप सब मंडे और ट्यूसडे इधर होंगे, उसमें फिर आप रमज़ान की बहुत सारी बातें सुनेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह यहाँ आप लोगों को ब्रेक दे देते हैं छोटा सा, और फिर उसके बाद आगे जो भी प्रोग्राम है आप लोग कंटिन्यू कीजिए, बताइए इनको कि क्या करेंगे ये लोग, कोई सजेशन, कोई राय, कुछ। यकीन करें अगर आप अपनी यंग बच्चियों को अगर एक इतना अरसा स्कूल में, अगर कॉलेज से वो गैप ले सकते हैं किसी ऐसे दौर में कि जहाँ उन्होंने मतलब एक सेशन पूरा कर लिया, बगला लेना है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। यानी आप जिसको कहते हैं ना कि आप दुआएं देंगे, जब हम अल्लाह अपनी औलादों को अल्लाह से जोड़ते हैं ना, तो वो हमसे भी जुड़ जाते हैं। आज इतने ये यानी मसाइल हैं कि बच्चे सुनते नहीं इस तरह की बातें, तो उसकी वजह यह है कि इनकी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला। और एक तोहफ़ा दे के भेजिए, कल ये बच्चियाँ अपने घरों में चली जाएंगी, फिर सारी ज़िंदगी बच्चे, शौहर, ससुराल, घरदारियों में रहेंगी, वो वक्त नहीं मिलेगा। ये गोल्डन टाइम है, और आप सब भी अपने लिए डिसाइड करें। मैं नहीं कहती स्कूल छोड़ दें, जो जितना करेगा, लेकिन अगर इस वक्त अगर आपने इसको चूज़ कर लिया ना, तो इंशाल्लाह ताला आप इसके बाद फिर बहुत कुछ करेंगे। क्योंकि आप जैसे लोग जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने इस सोसाइटी में काम करना है ना। आप लोग सीखेंगे, फिर आप अपनी नॉर्वेजियन ज़ुबान में सिखाएंगे, जो जिस ज़ुबान में काम बात करता है उसमें सिखाएगा, और बग़ैर सीखे आप काम नहीं कर सकते। आज दीन को जो सबसे बड़ा नुकसान लोग दे रहे हैं ना, मैं आपको सच कह रही हूँ, वो बेदीन लोग नहीं दे रहे, क्लबों और होटलों में और शॉपिंग्स में जाने वाले नहीं दे रहे। इस वक्त दीन को नुकसान देने वाले दीनदार लोग हैं, बग़ैर तरबियत, बग़ैर सीखे जब सिखाते हैं तो यही हालात होते हैं। जिसको कहते हैं ना नीम हकीम वाली कैफियत, तो एक दफ़ा सीख ले, फिर इंशाल्लाह आप ख़ुद देखेंगे कि आपके लिए बहुत ही आसानियाँ हो जाएंगी। तो मुझे इजाज़त दें इस पर, इंशाल्लाह ताला ये नबहीदा कुछ कहना चाह रही हैं, और फिर आप लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे
वालेकुम
हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि उस्तादा ने आप लोगों को डिटेल बता दी, यानी इससे पहले मरियम ने भी रमज़ान की भी डिटेल बता दी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अब अल्लाह हम सबकी नियतें चेक करेगा, और कि कौन साबिकून अव्वलून में बनता है, कि क्या आप लोग नियतें करेंगे करते हैं, तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक फिर अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगा। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगी, जब मैंने खुद फर्स्ट रमज़ान ऑनलाइन ही मैंने जब कुरान शुरू किया, तो मैंने फर्स्ट रमज़ान जो है वो नूरुल कुरान ही से अटेंड किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं के वाकई ये बात सही है कि कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ है, तो उसको सही समझने का मौका ये होता है, बेस्ट मौका होता है, और मेरी ज़िंदगी में यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आई है, कि बस जैसे मेरे दिमाग खुल गया और मुझे समझ आने लगा कि मेरे मसाइल का क्या हल है। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जहाँ भी कोई मसला मेरी फैमिली में, मेरी बहनों में, इन जगह जहाँ भी होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह की तौफीक से जब हम डिस्कशन करते हैं तो कुरान सुन्नत की रोशनी में अल्लाह मुझे उसके हल बता देता है, और यदि हम आपस में इसी तरह हम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी गैर ज़रूरी और फजूल चीज़ों से बच गए हैं। तो मेरा तो आप लोगों से यही मुखलिसाना मशवरा है कि आप सबको ये अल्लाह मौका दे रहा है, और अब जिस तरह हम लोगों ने मतलब पिछला कोर्स किया अभी हम लोगों ने, तो उसमें भी नॉर्वे में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वही बात के जिनको बाज़ लोगों को शैतान ने वसवसे डाल कर पीछे कर दिया, और बाज़ लोग जो है उन्होंने शैतान का मुकाबला किया, तो देखे अल्लाह ने आसानियाँ पैदा कर दी। तो मेरे आप सबसे यही इल्तिजा है कि जिस तरह मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरा दिल है कि आप सबको भी इसी तरह फ़ायदा हो, तो इंशाल्लाह इस रमज़ान को हमने बेहतरीन तरीके से गुजारना है, और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर अरेंजमेंट की है, उसमें भी आप लोग जो है नाम नीचे लिखवा ले, वहाँ पर मरियम लिख रही है, क्योंकि उस हिसाब से आप लोगों के फ़ोन नंबर हमें नाम सब कुछ पता चल जाए, ताकि फिर हम आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकें, जिसके लिए आना मुश्किल हो वो इंटरनेट पर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही होगा कि हम ग्रुप की शक्ल में मुख्तलिफ़ जगहों पर मिल जाए। और दूसरी बात ये, जिस तरह उस्तादा ने यानी लॉन्ग टर्म आफ्टर रमज़ान हमारा क्या प्रोग्राम है, तो उसमें भी यही है कि हम उम्मत मुस्लिमा के तो मसाइल का हल ही यही है कि उस कुरान को हम पकड़ लें और सुन्नत की इत्तबा करें। तो इंशाल्लाह हमने कोशिश करनी है कि इस क्लास के पहले स्टूडेंट बनने हैं, और इस नारवे में हमने इस कुरान का आगाज़ करना है, तो जितने हम सब ज़्यादा मिलेंगे तो इतने ही इस कोर्स को हम बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो आप सब से गुजारिश है कि आज का दिन है हमारे पास, हमने इस चीज़ के लिए अरेंज किया है, अब बच्चों का आगे प्रोग्राम हो रहा है, तो बच्चों को हम बिठा रहे हैं लाइन में, इस टाइम में जो है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो यानी नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए रमज़ान के लिए आप लोग जो है वहाँ पर नाम और वो लिखाएं, ताकि फिर हम आपको कांटेक्ट करके आपसे जो है आपको बता सके कि कहाँ पर हो रहा है। और इसी तरह जो हमारा आफ्टर रमज़ान प्रोग्राम है उसके लिए भी, तो बच्चे आ रहे उस दौरान आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। जजाकुमुल्लाह खैर वहसन, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
प्रेजेंटेशन बाद में दिखाएं, प्रेजेंटेशन कब दिखाएं अभी।